हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। करीब आधे घंटे बाद अर्णव वापस वहाँ आया तो धृति उसे उन बच्चों के बीच बैठी नजर आई, जहाँ धृति अधरों पर दिलफरीब मुस्कान सजाए बड़ी ही दिलचस्पी से उन बच्चों की बातें सुन रही थी। वहीं वो भोले भाले नादान बच्चे भी बड़ी ही उत्सुकता से उसे जाने क्या क्या बता रहे थे। कितनी खुश लग रही थी वो इस वक्त, और उन बच्चों के बीच बैठी खुद भी एक क्यूट सी बच्ची लग रही थी। अर्णव को इस वक्त उस पर टूट कर प्यार आ रहा था। जितना वक्त वो उसके साथ बिताता जा रहा था, जितना उसे जानता जा रहा था, उतना ही उसकी मोहब्बत के समुद्र में गहराई तक उतरता जा रहा था, और ये अनकहे से एहसास बेहद हसीन थे। कुछ पल वो हाथ बांधे खड़ा उसे एकटक देखता रहा, या यूं कहूं कि बड़े ही प्यार से उसे निहारता रहा। फिर उसने अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए उसे आवाज़ लगाई, धृति। धृति जो उन बच्चों की बातों में मगन थी, अर्णव की भारी आवाज़ कानों में पड़ते ही उसने चौंकते हुए पलटकर उसे देखा। तब तक में अर्णव ने उसकी ओर कदम बढ़ा दिए और भौहें चढ़ाते हुए बोला, सारे वक्त यहीं बैठने का इरादा है, या जो गिफ्ट लाई हो उन्हें बच्चों को देने की भी कोई इच्छा है? धृति तो ये बिल्कुल ही भूल गई थी, इसलिए अर्णव की बात सुनकर पहले तो वो चौंक गई, फिर हड़बड़ी में सर हिलाते हुए बोली, देने हैं ना। इतना कहकर वो उठकर खड़ी हो गई और अपने कपड़े व्यवस्थित करते हुए उन्हें झाड़ने लगी। उसे उठते देखकर सब बच्चे भी उठकर खड़े हो गए। दीदी, ये भैया कौन है? एक बच्चे ने वहाँ खड़े अर्णव को अपनी छोटी छोटी आँखों से स्कैन करते हुए धृति से सवाल किया। जवाब में पहले तो धृति ने पलटकर अर्णव को देखा, जिसकी निगाहें उसी पर ठहरी थीं। शायद वो भी इस सवाल के जवाब को सुनने को उत्सुक था और ये देखने को बेताब था कि आखिर धृति क्या कहकर उसका परिचय करवाती है। धृति एक पल को सकुचाई, फिर अर्णव पर से निगाहें फेरते हुए बोली, मेरे पति हैं। पति क्या होता है दीदी? दूसरी बच्ची ने गंभीर निगाहों से उसे देखते हुए उसे सवाल किया। धृति पहले तो उसका सवाल सुनकर सकपका गई और माथे पर बल डालते हुए सोचने लगी कि अब बच्ची के इस सवाल का क्या जवाब दे वो, फिर संभलते हुए बोली, वो जवाब बड़ी हो जाएंगी तब समझ आएगा आपको, अभी बस इतना समझ लीजिए कि मैं इनके साथ रहती हूँ। धृति ने बड़ी ही समझदारी से सिचुएशन को संभाल लिया और धृति का उसे पति कहकर इंट्रोड्यूस करवाना अर्णव के दिल के तार छेड़ गया। धृति ने गहरी सांस छोड़ी और मुस्कुरा दी। इतने में एक दूसरे लड़के ने अजीब निगाहों से अर्णव को घूरते हुए सवाल किया, आप इनके साथ आई हैं? धृति ने सहजता से हामी भर दी। उन बच्चों की भीड़ में मौजूद एक बच्ची, जो तब से बस एकटक अर्णव को देख रही थी, उसने लबों पर सौम्य सी मुस्कान बिखेरते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहा, दीदी, भैया तो बहुत हैंडसम है, बिल्कुल प्रिंस जैसे। उस छोटी सी बच्ची की बात सुनकर धृति की निगाहें अनायास ही अर्णव की ओर उठ गई, और उसके व्यक्तित्व की खूबसूरती को वो नकार ना सकी। यकीनन वो बहुत हैंडसम था। कुछ पल को धृति की नज़रें भी अर्णव के हैंडसम और चार्मिंग चेहरे पर ठहरीं, पर उसकी गहरी काली निगाहों से सामना होते ही धृति ने हड़बड़ी में उस पर से निगाहें फेर लीं और सकपकाते हुए बोली, हैंडसम तो हैं, आप भी बहुत क्लीटी हैं दीदी। एक छोटी लड़की आकर उसके पैरों से लिपट गई, उसका क्यूट सा चेहरा उस पर टोटली जुबान। धृति खुद को उसे प्यार करने से रोक न सकी और तुरंत ही उसके सामने बैठते हुए प्यार से उसके गाल को छू लिया, और आप सुपर क्यूट हैं लिटिल डॉल। दीदी, मुझे भी ऐसा हैंडसम पति चाहिए, उस बच्ची ने अर्णव की ओर उंगली दिखाते हुए इतनी मासूमियत से अपनी ख्वाहिश बयां की कि धृति उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। बित्ते भर की लड़की थी, ठीक से बोलना भी नहीं आता था उसे, पर सपने अभी से इतने बड़े बड़े देख रही थी। पति की डिमांड तो ऐसे कर रही थी मानो पति नहीं अपनी पसंद का खिलौना मांग रही हो। अर्णव अपनी धड़कनों को थामे एकटक धृति को देखने लगा। उसकी निश्चल खिलखिलाती हंसी में वो खो सा गया था। धृति कुछ देर यूं ही हंसती रही, फिर उस बच्ची की मासूम निगाहों को खुद पर टिके देखते उसने किसी तरह अपनी हंसी को रोका और प्यार से उसके गाल को छूते हुए बोली, ओह, पर अभी तो आप बहुत छोटी हैं, पहले बड़ी हो जाइए, फिर आपको भी एक राजकुमार जैसा पति मिलेगा जो आपको बहुत खुश रखेगा। वो बच्ची धृति की बात सुनकर कुछ इस तरह खुश हुई मानो उसे उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। इसके बाद सब बच्चों के साथ धृति अंदर चली आई, जहां और भी बच्चे मौजूद थे। अर्णव ने कार से सारा सामान निकलवा दिया था और धृति बड़े ही प्यार से सब बच्चों को साथ लाए गिफ्ट्स दे रही थी। खाने की चीजें देखकर वो बड़े खुश हुए थे और धृति के गालों पर ढेर सारी पप्पियां भी मिली थीं। इतना ही नहीं, अपने साथ उन्होंने धृति को भी खिलाया था। अर्णव एक तरफ खड़ा उन बच्चों में शामिल धृति को बड़े ही प्यार से निहार रहा था, जो आज इतनी खुश थी जितनी शायद पहले कभी न हुई हो। शाम तक धृति बच्चों के साथ बातें और मस्ती करती रही। वो बच्चे भी उसके साथ घुल मिल गए थे। उन छोटे बच्चों जैसी ही मासूम तो थी वो, बस शैतान नहीं थी। शाम हुई तो अर्णव ने उसे घर चलने को कहा। धृति का मन तो नहीं था, पर घर भी जाना था। वो बेमन से ही सब बच्चों को बाय करके और फिर आने का वादा करके कार में जाकर बैठ गई। जब तक कार मेन गेट से बाहर नहीं निकल गई, सब बच्चे धृति को बाय करते रहे। धृति भी विंडो से सर बाहर निकाले उन्हें बाय करती रही। उसने बाद में खिड़की से सर टिकाए आंखें मूंद कर बैठ गई। थकावट उसके चेहरे पर पैर जमाने लगी थी, पर अधरों पर अब भी भीनी सी मुस्कान सजी थी, जो अर्णव के दिल के सुकून की वजह बनी हुई थी। घर पहुँचते पहुँचते 8 बज गए थे। अर्णव धृति के साथ अंदर आई तो पूरे ड्राइंग रूम में स्याह अंधेरा फैला हुआ था। ये देखकर धृति कुछ चौंक गई, पर अगले ही पल वो पूरी जगह सुनहरी रोशनी में डूब गई। बूम की आवाज के साथ उस पर स्पार्कल्स बरसने लगे और साथ ही माधुरी की चहकती हुई आवाज उसके कानों से टकराई। सरप्राइज! धृति सामने का नजारा और माधुरी को इस वक्त यहाँ देखकर बुरी तरह चौंक गई, पर माधुरी तो तुरंत ही लपटकर उसके गले से लग गई। हैप्पी बर्थडे धृति! माधुरी ने उसके गले लगते हुए उसे बड़ी ही उत्सुकता से बर्थडे विश किया। धृति अब भी हैरान थी और आंखों की पुतलियां फैलाए अचंभित से उसे देखे जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हॉल की डेकोरेशन हो रखी थी, माधुरी सामने खड़ी थी, सब नौकर भी वहां मौजूद थे। धृति कुछ पल शॉक्ड सी बस सब देखती रही, फिर अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया और उसकी अचंभित निगाहें अर्णव की ओर घूम गई। उसकी हैरानी और आंखों में झलकते सवाल को समझते हुए उसने हॉली से मुस्कुराते हुए कहा, आज का आखिरी सरप्राइज, अब हमारे साथ तुम्हारा पहला बर्थडे सेलिब्रेट करना तो बनता था, फिर बिना तुम्हारी दोस्त के सेलिब्रेशन फीका रहता। चंद लफ्जों में उसने धृति को उसके सभी सवालों के जवाब दे दिए थे और धृति बस टकटकी लगाए उसे देखती ही रह गई थी। इतने में माधुरी उसे खींचते हुए अंदर ले आई। सेंटर टेबल पर खूबसूरत सा केक रखा था, जिस पर बड़ी ही खूबसूरती से हैप्पी बर्थडे धृति लिखा हुआ था। एक बार फिर बहुत कुछ चल रहा था धृति के दिलो दिमाग में, पर वो खामोश रही। केक कटिंग में थोड़ी सकुचाई शायद आदत नहीं थी, पर माधुरी वहाँ मौजूद थी। उसने धृति से केक कटवाया और झट से उसे केक खिलाते हुए थोड़ा थोड़ा केक उसके गालों पर भी लगा दिया। धृति पहले तो चौंक गई, फिर उसको खिलखिलाकर हंसते देखकर मुस्कुरा उठी। धृति ने भी उसे केक खिलाया। बाकी सर्वेंट से तो वो दूर ही रहती थी, पर शीला से काफी सहज थी, इसलिए उसे भी उसने अपने हाथों से ही केक खिलाया। शीला ने भी उसे केक खिलाते हुए जन्मदिन की मुबारकबाद दी, साथ ही एक गिफ्ट भी उसके सामने पेश कर दिया, जिसे धृति ने सकुचाते हुए स्वीकार कर लिया।
माधुरी ने भी एक बार फिर उसे बर्थडे विश किया और साथ ही एक गिफ्ट बॉक्स उसके हाथ में थमा दिया। सब सर्वेंट्स के बीच केक बांटा। इस दौरान अर्णव खामोशी से धृति को देखता रहा, जो माधुरी के साथ व्यस्त थी। दोनों किसी बात पर मुस्कुरा रही थीं। सबके बीच न तो अर्णव ने धृति की ओर कदम बढ़ाए और न ही धृति उसकी तरफ बढ़ी। केक कटिंग के बाद स्पेशल डिनर हुआ। उसके बाद भी माधुरी काफी देर तक धृति के साथ ही रुकी, जबकि अर्णव दोनों को अकेला छोड़कर कमरे में जा चुका था। धृति ने जाते हुए अर्णव को एक नज़र देखा जरूर था, पर बोली कुछ नहीं। कुछ देर बाद वो कमरे में आई। अर्णव उसे सोफे पर बैठे फोन चलाता नजर आया और उसके सामने टेबल पर एक प्लेट में केक रखा था, जिसे देखते हुए धृति को ख्याल आया कि उसने अर्णव को केक नहीं खिलाया और न ही अर्णव ने उसे केक खिलाया। एक पल को ये सोचते हुए उसके कदम ठिठके जरूर, पर अगले ही पल वो संभलते हुए आगे बढ़ गई। धृति अभी आज मिले गिफ्ट रखकर पलटी ही थी कि अपने ठीक सामने खड़े अर्णव को देखकर उसके कदम ठिठक गए और आंखें बड़ी बड़ी किए वो हैरान परेशान से उसे देखने लगी। अपनी दोस्त से केक खाया, मेरे हाथ से नहीं खाओगी? अर्णव ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांकते हुए जरा नाराजगी से कहा और केक वाला स्पून उसकी ओर बढ़ा दिया। टू बी कंटिन्यूड।